हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही अगली सुबह जोया की आंख खुली, उसने खुद को अबीर की मजबूत बाहों में पाया। जोया कितनी देर तक अबीर की चेहरे की ओर देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, कितना हैंडसम है ये, इसे तो कोई भी लड़की आसानी से पा सकती थी। फिर क्यों इसने मेरे पीछे इतना बड़ा दाव लगाया? क्यों मेरे लिए सब कुछ बदल दिया? यहाँ तक कि खुद को भी बदल कर रख दिया इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। क्या वाकई मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल सके? जोया कितनी देर तक अबीर की ओर देखते हुए सोचती रही, तभी अबीर अचानक से आंखें बंद किए हुए ही बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो ट्रेनिंग पर चलें। जैसे ही अबीर ने ये कहा, जोया ने शर्मा कर अपनी पलकें नीची कर लीं और फिर एकाएक बोली, आप जाग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। तब अबीर ने भी अपनी आंखें खोलीं और जोया को अपनी बाहों में और कस कर पकड़ते हुए बोला, मेरी बीवी कब क्या करती है मुझे सब कुछ पता होता है। और मैडम, शायद आप भूल रही हैं, ठीक आधे घंटे बाद आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। क्लासेस? कौन सी क्लासेस? जोया हैरानी से बोली। तब अबीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आपकी फिजिकल क्लासेस। जोया ने ये सुनकर अपना मुंह बिचका दिया और बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं ये सब ना सीखूं? जोया की बात सुनकर अबीर हैरानी से बोला, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? वो एक्चुअली अबीर सर, वो फिजिकल ट्रेनिंग करके मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये देखिए मेरी कमर में तो सूजन भी आ गई है। जोया की बात सुनकर अबीर ने जोया को छोड़ा और खुद भी उठकर बैठ गया और जोया से बोला, दिखाओ कहाँ सूजन आई है। अबीर की बात सुनकर जोया थोड़ा परेशान हो गई और जब अबीर ने दूसरी बार बोला, दिखाओ कहाँ सूजन आई है तुम्हारे, तब जोया ने हल्का सा अपना नाइट सूट ऊपर की ओर खिसका दिया और जैसे ही अबीर की नज़र जोया की खूबसूरत गोरी कमर पर पड़ी तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी और फिर उसने अपने हाथ को उसकी कमर पर चारों ओर फेरते हुए कहा, कहाँ है सूजन, मुझे तो दूर दूर तक कोई सूजन दिखाई नहीं दे रही है। अबीर की बात सुनकर जोया चिढ़ गई और बोली, मिस्टर राठौड़, मुझे लगता है आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। आपको क्या मेरी कमर पर ज्यादा एक्सरसाइज करने से पड़े हुए नील के निशान और सूजन दिखाई नहीं दे रहे हैं? तब अबीर ने जोया से कहा, मैंने आपसे कहा ना, आपकी कमर पर कोई निशान या सूजन नहीं है। जैसे ही अबीर ने एक बार फिर जोया की बात को नकारा, उसे अब गुस्सा आने लगा और उसने अपना ऊपर का नाइट सूट उतार दिया। अब बस केवल एक छोटे कपड़े में वो अबीर के सामने खड़ी थी और पीछे की ओर घूमते हुए बोली, अब आप ध्यान से देखिए, आपको सूजन दिखेगी। जोया तैश में अपना टॉप उतार बैठी थी, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो किस हालात में अबीर राठौड़ के सामने खड़ी हुई थी। तभी अबीर खुद को रोक नहीं पाया और उसके हाथों की दो उंगलियां जोया की खूबसूरत कमर पर फिसलने लगीं। जैसे ही अबीर की उंगलियों ने जोया को छुआ, उसके अंदर एक करंट सा दौड़ गया और जल्दी ही जोया को एहसास हो गया कि वो किस हालत में अबीर के सामने खड़ी थी। तभी जल्दी से जोया ने बेड पर पड़ी हुई चादर को उठाकर खुद को उसमें कवर कर लिया और अबीर जोया की हालत को समझकर जल्दी से बाथरूम में घुस गया। अबीर के जल्दी से बाथरूम जाने के बाद जोया मुस्कुराने लगी। वहीं जल्दी ही अरहम ठाकुर को होश आया और अपने सामने अपनी माँ को देखकर वो चौंक गया, आप यहाँ कैसे आईं और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तब गजाला जी ने अरहम ठाकुर को सारी बात बता दी कि अबीर सिंह राठौड़ का एक गार्ड उसे यहाँ तक लेकर आया है और साथ ही साथ उसने भी मुझे फ़ोन करके यहाँ बुला लिया था। उसके बदले में मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए थे जिससे वो खुश होकर चला गया। मैंने उसे कह दिया है कि वो अबीर को इस बारे में कुछ ना बताए। लेकिन बेटा, मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जोया कौन है और बार बार तू बेहोशी की हालत में जोया का ही नाम ले रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर अरहम उनकी ओर देखने लगा और सोचने लगा कि इस औरत को मैंने इतना हक नहीं दिया है कि ये मेरी पर्सनल बातों में दखल दे। लेकिन अभी वो किसी भी तरह से गजाला जी से नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि अभी गजाला जी उसके और भी ज्यादा काम आने वाली थीं। ये सोचकर उसने जोया के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने का फैसला कर लिया। तब अरहम ने गजाला जी से कहा, जोया बड़ी हवेली की मालकिन की बेटी है जहां आपके पति काम किया करते थे। जैसे ही गजाला जी ने ये सुना, जोया का बचपन का मासूम खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा चेहरा याद आ गया। गजाला जी जोया को उसके बचपन में मिली थीं और अपने पति के कहने पर वो उसे प्यार भी किया करती थीं। अचानक से इतने दिनों बाद जोया उसके सामने आ जाएगी, उन्होंने ये सोचा नहीं था। जल्दी ही वो अरहम से बोली, लेकिन बेटा, तुम बार बार फिर जोया का नाम क्यों ले रहे थे? तब अरहम ठाकुर ने गजाला जी से कहा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से वो मुझसे दूर हो गई है और अब वो यहाँ है, आपके सौतेले बेटे अबीर सिंह राठौड़ के पास, और उसे ढूंढने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जैसे ही गजाला जी ने ये सुना, उनका हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी मासूम सी बच्ची जोया उनके बच्चों के साथ खेल रही थी और अब वो उनके सौतेले बेटे अबीर सिंह राठौर के साथ थी। ये बात गजाला जी के लिए किसी झटके से कम नहीं थी और वो कुछ सोचते हुए अरहम ठाकुर के कमरे से बाहर निकल गईं। वहीं दूसरी ओर अरहम ठाकुर अपने भाई अरमान ठाकुर को एक एक बात बता चुका था कि अबीर सिंह राठौड़ ने उसे और अपनी सौतेली माँ को उसके घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही अरमान ठाकुर के तन बदन में आग लग गई। तभी अरमान ने अरहम से कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 4 महीने और इंतजार करना है। अबीर सिंह राठौड़ ने खुद कहा है कि जोया 4 महीने बाद उसके सामने आ जाएगी, तो हम सिर्फ उसी पल का इंतजार है। या तो तुम वहाँ इंतजार कर सकते हो, या अगर तुम्हारा वहाँ मन नहीं लग रहा है तो तुम वहाँ से वापस आ सकते हो, मैं अभी तुम्हारी टिकट करा देता हूँ। अरमान की बात सुनकर अरहम ठाकुर ने मना कर दिया और बोला, मैं 4 महीने जोया का यही इंतजार करूँगा और उसे साथ लेकर आऊँगा और आपको अपने हाथों से सौंपूंगा। अरमान की बात सुनकर अरमान मुस्कुराने लगा, उसे अपने भाई की वफादारी साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर मेहर अपनी बिजनेस डील के लिए रंधावा कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही मिस्टर रंधावा ने मेहर को देखा, वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि एक तो मेहर ने अपने आप को एकदम मॉडल बना लिया था और वो खूबसूरत तो पहले से ही थी। अब अपनी खूबसूरती के जाल में किसी को भी फंसाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जल्दी ही उसने मिस्टर रंधावा को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और उसके साथ एक बेड शेयर कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिस्टर रंधावा जो प्रोजेक्ट मिस्टर सिंगानिया यानी राजवीर सिंगानिया की कंपनी को देना चाहते थे, वो अब अरमान ठाकुर की कंपनी की झोली में जा गिरा। अरमान के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे दूर दूर तक ये नहीं पता था कि उसकी बहन ने ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हासिल किया है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का पता था कि उसने अपनी समझदारी से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, और वैसे भी अगर उसकी बहन किसी के साथ बेड भी शेयर करती है तो अरमान को इस बात से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे फर्क पड़ता था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी रेप्यूटेशन से, जो वो समाज में बरकरार रखना चाहता था। चाहे वो इज्जत उसकी बहन की इज्जत लूटने के बाद ही उसे क्यों न मिले, इस बात की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी।
वहीं राजवीर को जैसे ही पता चला कि रंधावा ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। एक तो वो राजा और चांदनी को देखकर वैसे ही तपा पड़ा था, और अब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से जाना उसकी ईगो को अंदर तक हर्ट कर गया था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर ने जोया को अच्छी तरह से समझा दिया था कि उसे ये ट्रेनिंग हर हाल में पूरी करनी ही होगी, चाहे उसमें उसकी मर्जी शामिल हो या ना हो। अब जोया ने भी ट्रेनिंग में धीरे धीरे अपना मन लगाना शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो सारे दाव पेंच सीखने लगी थी।